आखिरी चरण का लोकसभा चुनाव भोजपुरी भाषा की अस्मिता और मान सम्मान के लिए काफी अहम होगा। इस बार बीजेपी ने भोजपुरी कलाकारों को थोक के भाव में उतार दिया है, लेकिन डर इस बात का है कि भोजपुरी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के आंदोलन के नाम पर कहीं हमेशा की तरह लॉलीपॉप कल्चर फिर हावी ना हो जाए। मैं ये बात साफ कर देना चाहती हूँ कि मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जैसे भोजपुरी कलाकारों को चुनावी मैदान में उतारने से भोजपुरी भाषा को सम्मान नहीं मिलेगा। ज़्यादातर भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में वोटिंग या तो 12 मई को हो चुकी है या 19 मई को होनी है। भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलवाना भी वोटर का एक अहम मुद्दा है। जिन भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में आखिरी दो चरण में चुनाव हैं वो हैं गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़ पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहनाबाद। अफसोस इस बात का है, चुनावी सभाओं के लाउडस्पीकर से निकलती रिंकिया के पापा, हर हर महादेव और निरहुआ सटल रहे जैसी आवाज़ें भोजपुरी से जुड़ी असल मुद्दों को दबा रही हैं। और अगर वो हमेशा की तरह कामयाब हो गई तो भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की धरती, कुंवर सिंह की ज़मीन और चंपारण का सत्याग्रह आने वाली पीढ़ियों के लिए महज इतिहास का चैप्टर बन के रह जाएंगे। इस बार का लोकसभा चुनाव इसलिए भी भोजपुरी भाषा के लिए मान सम्मान के लिए अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी उसी मिट्टी और बोली का हिस्सा है जहां चुनाव अगले चरण में होना है। इसमें कोई दो राह नहीं कि पिछले 5 साल में तो भोजपुरी भाषा के लिए कुछ नहीं हुआ। बीजेपी के बड़े नेता भोजपुरी को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिलवाने के मुद्दे पर इस बार भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। राधामोहन सिंह, आरके सिंह, अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, मनोज सिन्हा जैसे बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री और दूसरे मौजूदा सांसद भी भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात अपनी सभाओं में खुलकर नहीं बोल रहे। आखिर वो भाषा जिसने भारत के बाहर भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा है, उसके साथ अपने देश में ही ऐसे सौतेला व्यवहार क्यों? इस सवाल पर पत्रकार, भोजपुरी कवि और गायक प्रमोद कुमार का कहना है कि भोजपुरी मूलतः एक राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो चुकी है। संविधान के अनुच्छेद 29 में नागरिकों को यह मौलिक अधिकार है कि उनकी भाषा, संस्कृति और लिपि को बनाए रखा जाए। इस हिसाब से करोड़ों लोगों की भाषा भोजपुरी का पूरा हक है कि उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ऐसा होने के बाद भोजपुरी को वो देशव्यापी सम्मान मिल सकेगा जो अनुसूची में शामिल दूसरी भाषाओं को पहले से मिल रहा है। बहुत से लोगों का मानना है कि भोजपुरी को अगर संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा तो हिंदी कमज़ोर हो जाएगी। मेरा उनसे सवाल है कि जब सिंधी को संवैधानिक दर्जा मिला था, क्या गुजराती कमज़ोर हुई? फिर भोजपुरी हिंदी को कैसे कमज़ोर कर देगी? इसमें कोई दो राह नहीं कि चुनावी मौसम में भोजपुरी भाषा और माटी को हमेशा एक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। हो भी क्यों ना, जब यह भाषा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों से 100 से भी ज़्यादा सांसदों को चुनकर दिल्ली भेजती है। लोकसभा चुनाव की चर्चा मॉरिशस, सुरीनाम, फिजी, गयाना, टोबैगो, त्रिनिदाद, नीदरलैंड जैसे देशों में भी है क्योंकि वहाँ भोजपुरी आबादी है। भारत समेत पूरी दुनिया में भोजपुरी बोलने वालों की तादाद लगभग 240 मिलियन। कवि रघुवीर नारायण जी की कविता भोजपुर की महत्ता को बहुत सुंदर ढंग से पेश करती है। गंगा रे जमुनावा के झिलमिल पनिया से, सूरज झमकी लहरे रे बटुया, ब्रह्मपुत्र पंचनद धरत निसदिन, सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे भटुए। प्रमोद कुमार का मानना है कि भोजपुरी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलवाने के सवाल पर केंद्र सरकार और बीजेपी को अपनी मंशा साफ करनी चाहिए। यह सच है कि भोजपुरी कलाकारों को चुनावी मैदान में उतारने से भोजपुरी भाषा को सम्मान नहीं मिलेगा। हैरानी की बात है कि भारत से बाहर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भारतीय भाषा अपने ही देश में सियासत का खिलौना बनकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और उसी भाषा के बूते पैसे और शोहरत कमाने वाले सियासत का ही हिस्सा बने हुए हैं।